सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की कृपा से अमल होगा। तृप्तिदि प्रकरण में ज्ञानी की जो निवृत्ति और प्रवृत्ति है उस विषय में क्या है, हम लोग चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते हुए ये बताया था जब ज्ञानी को ज्ञान हो जाता है वो ऐसा ज्ञान है, एक मजबूत ज्ञान जिसको कहा जाता है, बलवान, जिस ज्ञान में बल है, क्योंकि विद्याभ्यास के द्वारा उस ज्ञानी ने क्या है, उस ज्ञान को बलवान बनाया है। बलवान बनाने के कारण उसी बलवान ज्ञान के द्वारा क्या है, उस अविद्या को परास्त कर दिया और उस अविद्या का जो कार्य है वो भी क्या है, अपने आप ही परास्त हो जाता है। कल ही बताया, जीवित चूहा यदि बिल्ली को कुछ नहीं कर पाता है तो मरा हुआ चूहा बिल्ली को कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार से पाशुपात अस्त्र यदि कुछ नहीं कर पाए तो एक साधारण बाण जो है वो कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार ज्ञानी के लिए भी है, जो जीवित अविद्या वो पाशुपात अस्त्र जैसे है, जीवित चूहे जैसे है, तो जो जीवित अविद्या वो जब परोक्ष ज्ञान के समय में क्या है, उस साधक को कुछ नहीं कर पाई, तो जब पूर्ण रूपे न उस साधक को अपरोक्ष जब ज्ञान हो जाता है तो उस समय में क्या कर पाएगी अविद्या, क्योंकि मर जाती है अविद्या। इसलिए उस अविद्या का कार्य भी क्या हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो अविद्या का कार्य है, अविद्या तो नष्ट हो गई किंतु अविद्या का जो कार्य है उस कार्य के प्रति उस ज्ञानी का क्या निश्चय रहता है, ये सब मिथ्या है। और जो मिथ्या होता है उसके प्रति ज्ञानी की प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसे सीपी में चांदी का बोध हो गया कि ये क्या है, मिथ्या है, दिखने वाली जो चांदी है सीपी में वो मिथ्या है, तो जैसे अज्ञान अवस्था में जो प्रवृत्ति होती थी वो प्रवृत्ति अब ज्ञान अवस्था में नहीं होगी। क्यों? जो भी उसके नजर में दिख रहा है वो सब कुछ मिथ्या है। ये निश्चय होने के कारण, ये अनुभव होने के कारण क्या है, उस ज्ञानी की जो दिखने वाला कार्य उस कार्य के प्रति प्रवृत्ति नहीं होगी और ना ही वहां से कोई निवृत्ति होगी, क्योंकि प्रवृत्ति नहीं तो निवृत्ति भी नहीं है, दोनों नहीं है। ये सब बता करके अंत में ये कह दिया कि उसकी जो प्रवृत्ति निवृत्ति से रहित हो जाता है उसके लिए ना प्रवृत्ति का कोई उपयोग है और ना ही निवृत्ति का उपयोग है। तो जब उस अविद्या को उसने क्या है, समाप्त किया, उस अविद्या का कार्य अभी बचा है। अभी अविद्या क्या है, शव के रूप में पड़ी हुई है मान लीजिए, तो अब उसको भी तो हटाना चाहिए अविद्या को और अविद्या के कार्य को। जैसे कोई चीज क्या हमने नष्ट कर दी तो उसको रखते हैं क्या, नहीं रखते, उसको हटा देते हैं। तो किंतु यहां कहते हैं ज्ञानी को हटाने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा वो जो सामने पड़े रहने से उसका क्या है, यश बढ़ता है, ये बताया। उसी को लेकर के यहां पर श्लोक आ रहा है। अब जब यश बढ़ता है इतना तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, यश बढ़ गया, इससे भी क्या हो रहा है, भवतु एवं प्रकृति है किम आयातम, यहां पर हम लोग कल रुक गए थे। तो चलिए हो जाए, कीर्ति होनी चाहिए, यश बढ़ने दीजिए, कोई बात नहीं। प्रकृति है किम आयातम, इसमें इसे क्या आ गया, क्या सिद्ध हो रहा है इससे, उसका उत्तर देते हैं 83वें श्लोक के द्वारा। य एवं अतिशूरेण बोधेन न युज्यते बोधेन न वियुज्यते प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा देहादिगतस्यास्य किम् देहादिगतयास्य किम् एवं अतिशूरेण बोधेन। शूरवीर जो बोध है, जिस बोध में क्या है, वो बोध शूरवीर हो गया विद्याभ्यास से, अर्थात ज्ञान, विद्याभ्यास के कारण वो ज्ञान इतना शूरवीर हो गया, मजबूत हो गया। जैसे कोई व्यक्ति जो है रोज जिम जाता है तो उसके कारण क्या होता है, उसका शरीर मजबूत हो जाता है, लोहा जैसे हो जाता है, तो उसको सामान्य आदमी कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसी तरह विद्याभ्यास के कारण उस ज्ञानी का ज्ञान इतना मजबूत हो गया है, बलवान हो गया है, अतिशूर हो गया वो ज्ञान। तो ऐसा शूरवीर जो ज्ञान है वो ज्ञानी से अलग होता नहीं है, न वियुज्यते, उस बोध से वो ज्ञानी अलग कभी होता नहीं है। हाँ, वियोग मतलब अलग होना। जैसे जो जिम में जाने वाला व्यक्ति अभ्यास करते 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 उस शरीर में जो ताकत आई, वो जो शरीर में मजबूती आई, वो हटती है क्या वहां से? नहीं हटती है। इसी तरह ज्ञानी ने क्या है, विद्याभ्यास करते करते उस ज्ञान को इतना मजबूत बना दिया, इतना बलवान बना दिया अपने शरीर के अपने भीतर में, वो वहां से हटता नहीं है। तो कहते हैं उसका वियोग नहीं होता है, ज्ञान का अलग नहीं होता है। इसलिए जब ज्ञान उसकी उससे कभी अलग होता नहीं है, तो कहते प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा देहादिगततया स्य किम्। तो उस शरीर में प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति हो, शरीरगत जो प्रवृत्ति और निवृत्ति है, इस प्रवृत्ति से उसको क्या फर्क पड़ेगा? शरीर के भीतर जो प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति हो रही है उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर मजबूत ज्ञान है, वो ज्ञान क्या करता है, उसको प्रभावित होने नहीं देता है। जैसे पहलवान व्यक्ति है तो उसने हलवा भी खाया, अच्छा हल्का फुल्का खाया, उसको कोई परेशान करता है क्या? वो तो मजबूत शरीर है, ऐसी ताकत उसने लाई अभ्यास करके, वो चना कच्चे चने को भी क्या है पचा सकता है, और एक हल्का फुल्का जो है अन्न खिचड़ी उसको भी पका सकता है, मतलब पचन हो जाता है उसको, उसको कोई परेशानी नहीं होती है। उसके सामने जैसा भी अन्न आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ज्ञानी के सामने चाहे प्रवृत्ति क्या हो जाए अथवा निवृत्ति हो जाए, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। उस प्रवृत्ति और निवृत्ति से ना उसका कोई इष्ट है ना कोई अनिष्ट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यह टीका देख लीजिए, यह पुमान एवं उक्त प्रकारेण अतिशूरेण अविद्या तत्कार्य घात केन बोधेन ब्रह्मात्मैक्यत्व ज्ञानेन न वियुज्यते न कदापि वियुक्तो भवति। कहते हैं जब मनुष्य उक्त प्रकारेण मतलब अभी तक जो बताए के आ रहा है कि वो जो विद्याभ्यास, उस विद्याभ्यास के कारण क्या है, वो ज्ञान मजबूत हो गया, शूरवीर हो गया ज्ञान, अतिशूरेण, अतिशूरता के कारण उस ज्ञान में शूरता आ गई, मजबूती आ गई, ताकत आ गई। तो अविद्या तत्कार्य घातकेन बोधेन, कौन सा ज्ञान है, जो ज्ञान क्या करता है, अविद्या और उसके कार्य का घात करता है अर्थात नाश करता है, ऐसा जो बोध है, कौन सा बोध रूप ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है वो, तो ब्रह्मात्मकत्व जो बोध है, ज्ञान है, वो कौन सा ज्ञान है, जो शूरवीर ज्ञान, तो कहते ब्रह्मात्मकत्व ज्ञान, वो ब्रह्म और आत्मा एक है, ऐसा जो ज्ञान, वो ज्ञान अत्यंत मजबूत हुआ है विद्याभ्यास के कारण, वो ज्ञान क्या है, उस ज्ञान से न वियुज्यते अर्थात न कदाचित वियुक्तो भवति, वो कदापि उस ज्ञान से अलग होता नहीं है, वो ज्ञान हमेशा क्या बना रहेगा। अतः वो ज्ञान ही ज्ञानी तो स्वरूप है ना, उसका स्वरूप है, स्वरूप अपने से अलग थोड़ो होगा, जो जिसका स्वरूप है वो उससे अलग होता नहीं है। अथवा वृत्त्यात्मक ज्ञान लेंगे कि मैं ही आत्मा ब्रह्म हूं, मैं आत्मा ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये जो ज्ञान है वृत्त्यात्मक, वो ज्ञान भी वहां से हटता नहीं है। एक वृत्त्यात्मक ज्ञान है, एक स्वरूपात्मक ज्ञान है, स्वरूपभूत ज्ञान में, जैसे मैं ब्रह्म हूं ये वृत्ति बन गई ना, ये वृत्त्यात्मक ज्ञान, और एक स्वरूपभूत ज्ञान, वो जो ज्ञान स्वरूप है उसका, वो स्वरूप ज्ञान को ही क्या किया उसने, वही मैं ज्ञान रूप मैं हूं, क्योंकि उस ब्रह्म का रूप ज्ञान है, उस ब्रह्म का रूप चित है, उस ब्रह्म का रूप आनंद है ना, सत है, तो वो जो ज्ञान रूप ब्रह्म वो मैं हूं, ये ज्ञान, ये वृत्त्यात्मक ज्ञान, वो वृत्त्यात्मक ज्ञान भी वहां से कभी हटता नहीं है, जब तक शरीर है तब तक। इससे क्या हो गया, तो कहते हैं अस्य पुंसो देहादि निष्ठया प्रवृत्त्या निवृत्तया वा किम्। तो जब वो ज्ञान वहां से हटता नहीं है, हाँ, वो बोध रहेगा, बना रहेगा, जैसे हमें उस बोध के लिए आवृत्ति करने की जरूरत नहीं है, जैसे जिस परिवार में हम पैदा हो गए तो जो भी सरनेम होगा शर्मा वर्मा वो पक्का है ना, वो कहीं से हटता है क्या, आवृत्ति करने की जरूरत नहीं है। चाहे हम बीमार हो जाए, हाँ, बेहोश हो गए फिर आ गए, तो उस ज्ञान के लिए कहना पड़ा तुम शर्मा हो, ऐसा कहना पड़ा क्या, नहीं, मान ली एक दो चार दिन बेहोश हो गया और फिर क्या है वापस आ गया, शुद्धि पर आ गया, तो फिर उसको कोई कहता नहीं कि तुम शर्मा हो कि तुम वर्मा हो, अरे मैं तो बेहोश हो गया, तो पूछेंगे कौन हो तुम, अरे यार मैं शर्मा हूं वर्मा हूं, क्यों पूछ रहे हैं मुझसे, वो मेरे का मजाक कर रहे क्या, ऐसा वो बोलता है सामने वाले को, मतलब उसका जो पक्का जो बोध है वो कुछ भी हो जाए कुछ फर्क पड़ता नहीं, वो बना रहेगा यथावत। इसी तरह जो वृत्ति बन गई, वो बन गई तो बन गई, अब चाहे कुछ भी हो जाए वो नष्ट होने वाली नहीं है, इसी को लेकर कह दिया प्रवृत्तिया निवृत्तिया वा, चाहे वो प्रवृत्त हो जाए चाहे निवृत्त हो जाए, उसके ज्ञान को कोई फर्क पड़ता नहीं हो, ज्ञान यथावत बना रहता है। इसका मतलब क्या है भाई, प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति हो, अर्थात प्रवृत्ति के द्वारा कोई इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, अथवा निवृत्ति के द्वारा इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही कह रहे न किम अपि इष्टम अनिष्टम, उनका कुछ इष्ट होता है न अनिष्ट होता है, उस प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा उस ज्ञानी का न कोई इष्ट है न कोई अनिष्ट है, वो सब इन इष्ट अनिष्ट से क्या है वो परे हो चुका है। तो कहते हैं चलिए मान लीजिए इनकी प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है, वो अपने स्वरूप में है, तो ये जो ज्ञानी है, अब ज्ञानी का मतलब बड़ा हो गया, ज्ञानी का मतलब महान हो गया ना, अब ज्ञानी को देखकर दूसरे लोग भी प्रवृत्ति छोड़ देंगे, जैसे लोग बड़े लोग करेंगे वैसे छोटे लोग करेंगे। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जना स प्रमाणम कुरुते, वो जैसे करता है वैसे छोटे लोग करते हैं। तो इसका मतलब ज्ञानी ने प्रवृत्ति छोड़ दी, निवृत्ति भी छोड़ दी, तो फिर अज्ञानी भी ऐसा ही करेगा। तो ऐसा करेगा तो सब तो काम बिगड़ेगा ना। तो कहते हैं तरही ज्ञानी वत अज्ञानिनो अपि प्रवृत्तो अग्रहो न युक्त। तो ज्ञानी के जैसे अज्ञानी भी क्या है, प्रवृत्ति में आग्रह नहीं रखेंगे। फिर तो अजय प्रवृत्ति में आग्रह नहीं रखेंगे तब तो सब धर्म कर्म सब बंद हो जाएगा। ज्ञानी निवृत्त हो गया तो क्या है, अज्ञानी भी क्या है और किसी से निवृत्त हो जाएगा। अरे निवृत्ति होना तो निवृत्त तो किसी से भी हो सकता है। अज्ञानी धर्म से निवृत्त हो जाएगा तब तो काम बिगड़ जाएगा। तो ज्ञानी को तो प्रवृत्ति निवृत्ति तो होनी चाहिए। तो कहता है ये कोई ठीक बात नहीं है। जो अज्ञानी होते हैं उनके लिए प्रवृत्ति अवश्य होती है, वो करता ही है। ये नहीं कि ज्ञानी को देख करके अपनी प्रवृत्ति छोड़ेगा, नहीं, वो करेगा प्रवृत्ति। ना उसको कहने की जरूरत ही नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि उसके भीतर भले ज्ञानी को तो कोई कामना ही नहीं है इसलिए चुपचाप बैठा है, किंतु ज्ञानी को छोड़कर जो अज्ञानी है उसके भीतर तो आनंद कामना है ना। तो उस कामना के लिए तो प्रवृत्ति होगी कि नहीं? स्वभाव होगी, प्रवृत्ति होगी। इसी को लेकर के श्लोक आ रहा है, नहीं कहता है कि प्रवृत्ति हो जाएगी उनकी। उसके ज्ञानी के निवृत्त होने से अज्ञानियों की निवृत्ति नहीं होती है, उसकी प्रवृत्ति होती है। उसको लेकर ये श्लोक आ रहा है। प्रवृत्ता वाग्रहो न्यायो, प्रवृत्ता वाग्रहो न्यायो, बोधहीनस्य सर्वथा, बोधहीनस्य सर्वथा स्वर्गाय वापवर्गाय, स्वर्गाय वापवर्गाय यतीतव्यं यतो नृभि, यतीतव्यं यतो नृभि। प्रवृत्तो अग्रहो न्यायो, जो है ज्ञानी को छोड़कर जो अज्ञानी है उन लोगों का प्रवृत्ति में क्या है, आग्रह युक्तियुक्त ही है, क्योंकि बोधहीन है। बोधहीनस्य सर्वथा, जो बोधहीन है उनका सर्वथा हर तरह से हर प्रकार से उनका प्रवृत्ति में ही क्या है, आग्रह रहता है, ये युक्तियुक्त है। वो कभी निवृत्त होंगे नहीं। क्यों? किसी को स्वर्ग काम की इच्छा है तो स्वर्ग के लिए यज्ञ आगादी करेगा, दान धर्म करेगा, वो प्रवृत्त हो जाएगा। तो उसकी प्रवृत्ति युक्तियुक्त ही है। ज्ञानी जैसे जो है निवृत्ति उसके लिए युक्त नहीं है। यदि ज्ञानी जैसे अज्ञानी निवृत्त हो जाए तो स्वर्ग ही नहीं मिलेगा उसको, ये संसार की धन संपत्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि धन संपत्ति जो है संसार की, वो कोई अपने धर्म का ही फल है ना। हमने कोई ऐसा सत्कर्म किया है जिसका फल आज हमें मिला है। तो अज्ञानी तो यही चाहेगा ना, मुझे धन संपत्ति चाहिए। तो धन संपत्ति चाहिए तो भाई उसका एक मार्ग है, उसका एक जो तरीका है प्राप्ति का। तो क्या तरीका? तो धर्म कर्म। तो वो धर्म कर्म में क्या हो जाएगा, प्रवृत्त हो जाएगा, वो युक्तियुक्त है। ज्ञानी जैसा वो निवृत्त हो नहीं सकता, उसकी अज्ञानी की प्रवृत्ति जो है युक्त ही है। और एक है अपवर्गाय, अर्थात मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए भी क्या है, उसकी प्रवृत्ति होगी। क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन वो करेगा। वो अपने शरीर को, मन को, वाणी को शुद्ध करने के लिए करता रहेगा। जैसे गीता में कहा है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। वो शरीर से, मन से, वाणी से क्या करता है, इंद्रियों से, सभी क्या है, वो कर्म करता रहता है। वाचिक कायिक वाचिक मानसिक कर्म करता है। किसके लिए? वो आत्मशुद्धि के लिए, अंतकरण शुद्धि के लिए। कैसे? संग रहित, आसक्ति रहित क्या कर्म करता है, फल इच्छा से रहित कर्म वो करता रहता है। तो उससे क्या है, उसका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा और उसको अपवर्ग मिल जाएगा। अपवर्ग का मतलब क्या है? मोक्ष। अपवर्ग का अर्थ क्या है और पवर्ग क्या है? हाँ, अप का मतलब क्या है? नहीं, प का मतलब क्या है? हाँ? अच्छा, चलो वो आपको पता है, मैं दूसरा बता देता। प मतलब पार्वती। हाँ, प के बाद कौन सा वर्ण है? फ। फ मतलब फणी। फ फ के बाद कौन सा वर्ण है? ब। ब मतलब बालिंदु अर्थात चंद्रमा। ब के बाद कौन सा वर्ण है? भ। भ मतलब भस्मा। अब म मतलब मंदाकिनी। इससे रहित होना, इसका नाम क्या है? अपवर्ग। ये कौन है फिर? शंकर, मां पार्वती, ये सब उन रूप। इससे रहित जो हो जाता है उसी को मोक्ष है। यही मोक्ष है, मतलब सगुण से भी क्या है, ऊपर उठना है। पार्वती, फणी, फणी मतलब भगवान शंकर के लिए में फण है ना, नाग। बालेंदु चंद्रमा है उसके सिर पर, और जो है फिर क्या है? भस्म है, मंदाकिनी अर्थात गंगा जी है। ये सगुण है, ये सगुण से भी जो परे हो जाए वही वास्तविक मोक्ष है। अपवर्ग मतलब पवर्ग से रहित हो जाना, अर्थात सगुण से परे हो जाना। कठिन कुछ नहीं है, हमको ऐसा लगता है, हम उसका अभ्यास नहीं किया ना, अभ्यास न होने के कारण कठिन लगता है। जैसे जैसे अभ्यास होता जाएगा वो सरल होता जाएगा। उस सौंदर्य को भी तो समझना, इसलिए तो वेदांत पढ़ना है हमको प्रक्रिया। वेदांत पढ़ेंगे तो हमको उस सगुण से भी अधिक सौंदर्य उस निर्गुण में पता लग जाएगा। चलिए मान लीजिए, आपको, आप बोल रहे ना सगुण का सौंदर्य है, भगवान मान लीजिए आपके सामने प्रकट हो गए, उस भगवान को कितने देर तक देखते रहेंगे? कुछ समय तक देखेंगे। संसार कैसी मानी सबसे उत्तम सुंदर चीज है, उसको देखते देखते थकान नहीं आएगी? आएगी ना। देखिए, जो रूपवान वस्तु है अर्थात आकार में वस्तु है, उसको आरंभ में तो उत्साह रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा उत्साह। अच्छा, संसार में अधिक लोग किस में रहते हैं? नहीं, वो अपने स्वरूप में ही रहते अधिक है। 24 घंटे में से अत्यधिक आप कहां जाते हैं? सुषुप्ति में। सुषुप्ति में जो जाते हैं, तो सुषुप्ति में जाते तो वहां जो सुषुप्ति में जो है अपना स्वरूप, जाते तो जाते कहां है सुषुप्ति में? हम अपने स्वरूप में जाते हैं, हम अपने में लीन हो जाते हैं। इंद्रिय, शरीर, मन, संसार, धन, रूप, संपत्ति सबसे अलग हो जाते हैं और हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। कितने घंटे के लिए? 6 घंटे के लिए, और वहां से हटते नहीं है। अर्थात हमारी अत्यधिक स्थिरता कहां है? हमारे स्वरूप में ही है। क्यों भाई ऐसा? हाँ, सबसे आनंद उसी में है, अपने स्वरूप में। बाकी यहां से हट करके बाहर देखेंगे आनंद मिलेगा, किंतु वो आनंद बाद में फिर कहां? हाँ। कहने का तात्पर्य है, अपना स्वरूप इतना सुंदर है कि उससे जैसे सुंदर कुछ है ही नहीं, ऐसा स्वरूप है। बाकी सब वो अपनी वृत्ति जो है वो क्षणिक है, वहां पर भी वहां से हटना ही हटना है, चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कुछ भी हो, वो वहां से उसको हटना ही है। क्यों? ये इंद्रिया थक जाती है ना, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव, मन का स्वभाव, इसका उत्साहित होना और दोबारा थक जाना, ये उसका स्वभाव है, इसकी प्रकृति है। क्योंकि आखिर वो उसके भीतर उत्साह जो आता है वो कहां से आता है? आत्मा से आता है ना। जब वो निद्रा में चला जाता है, अपने स्वरूप में जाता है, तो वहां शांत होता है, तो वहां से उसको एनर्जी मिलती है, और फिर उस एनर्जी से वो देखता रहता है, और फिर थक जाता है तो फिर वहां से एनर्जी लेने वहां ही जाता है, ऐसा है। ये कह दिया, स्वर्गाय अपवर्गाय यतितव्यम यतो नृभिः, मनुष्य के द्वारा क्या है, स्वर्ग और अपवर्ग के लिए प्रयत्न करना चाहिए, वो करता ही है, चाहे स्वर्ग हो चाहे अपवर्ग हो। सुख के लिए तो कुछ न कुछ खटपट तो करनी ही पड़ेगी, बिना खटपट करे बिना सुख मिलने वाला नहीं है, तो उसकी प्रवृत्ति हम कहने की जरूरत ही नहीं, अगर तुम प्रवृत्त हो जाओ और तुम कुछ करो बोलने की जरूरत नहीं है, उसको करना ही पड़ेगा। तत्र उपपत्ति माह, उसमें उपपत्ति देते हैं कि जो अज्ञानियों की जो प्रवृत्ति, उस प्रवृत्ति में उसका आग्रह नहीं होगा, ऐसा नहीं उसका आग्रह होगा, उसमें युक्ति क्या है, क्योंकि उसको कुछ चाहत है, तो क्या चाहत है, स्वर्ग की चाहत है, मोक्ष की चाहत है। किसी को स्वर्ग और मोक्ष भी नहीं चाहिए तो उसको इस मृत्युलोक की धन संपत्ति तो चाहिए, चाहिए तो उसके लिए तो पूजा पाठ करेगा, भगवान को कहेगा, भगवान हे प्रभु हमारे घर में सुख शांति आवे, मैं आपके मंदिर में क्या है हर सोमवार को आ जाऊंगा, दूध चढ़ाऊंगा, हमारे घर में सुख शांति आवे, तो प्रवृत्ति हुई क्या नहीं उसकी, हो गई। चाहे स्वर्ग का हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे यह लोक का सुख हो, हर सुख के लिए, प्रत्येक सुख के लिए उसकी प्रवृत्ति होना अनिवार्य है। वो कहीं ना कहीं जाएगा, भगवान के दरबार में नहीं जाएगा तो और कहीं ना कहीं जाएगा, परंतु जाएगा, यही युक्ति इसकी। स्वर्गाय इति विदुषः अग्रहो न युक्त इति उक्तम तर्हि कर्मणां मध्ये वर्तमानेन तेन किं कर्तव्यम्। चलिए, विद्वान का क्या है, प्रवृत्ति और निवृत्ति में कोई आग्रह नहीं रहता है। विदुषः अग्रहो न युक्तम, विद्वान के लिए आग्रह मत करिए कि उसको प्रवृत्त होना चाहिए निवृत्त होना चाहिए, उसके लिए कोई आग्रह और नहीं है प्रवृत्ति निवृत्ति में, ये कह दिया पहले, तो मन में शंका होती है पूर्व पक्षी को, तरी कर्मिणाम मध्य वर्तमानेना तेन किम कर्तव्यम। अब ज्ञानी क्या मनुष्य को छोड़ करके रहेगा कि जानवरों में रहेगा क्या, वो ज्ञानी भी तो मनुष्य के समुदाय में रहेगा, लोक में ही रहेगा, तो फिर वो ज्ञानी जो है कर्मियों के बीच में रहेगा, तो कर्मियों के बीच में रहेगा तो कर्मियों के बीच में रहते हुए उसका क्या कर्तव्य है, रहेगा कर्मियों के बीच में तो उसका कर्तव्य क्या है, वहां पर उसके कर्तव्य के बारे में बता रहे हैं कि उसको अज्ञानियों के बीच में यदि रहना है तो करना क्या चाहिए, ज्ञानी को वो क्या करता है उसके विषय में बता रहे हैं। विद्वांश्चित्तादृशां मध्ये, विद्वांश्चित्तादृशां मध्ये तिष्ठे तदनुरोधत, तिष्ठे तदनुरोधत कायेन मनसा वाचा, कायेन मनसा वाचा करोत्येवाखिला क्रिया, करोत्येवाखिला क्रिया। विद्वांश्चित, यदि विद्वान है कोई, वो तादृशाम मध्ये, तादृशाम अर्थात कर्मी, उन कर्मियों के मध्य में यदि रहे तो उनको कैसे रहना चाहिए, उन कर्मियों के अनुसार ही रहना चाहिए। कैसे, किस किस से? शरीर से, मन से, वाणी से। अब जैसे सज्जन लोग हैं, तो सज्जन लोग क्या है, पूजा पाठ करेंगे, हाँ, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करेंगे अथवा तुलसी की माला धारण करेंगे, त्रिपुंड लगाएंगे, कोई गोपी चंदन लगाएगा, हाँ, माला हाथ में लेकर के जप करेगा, ध्यान करेगा, पूजा करेगा। कौन? कर्मी लोग। तो उन कर्मियों में रह करके ज्ञानी को उसी तरह करना चाहिए। हाँ, ज्ञान होने के बाद उसको ऐसा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? क्योंकि अज्ञानी लोग, कर्मी लोग उस ज्ञानी को क्या मानते हैं? श्रेष्ठ मानते हैं। जब श्रेष्ठ मानते हैं तो उस श्रेष्ठ ने उन्हीं कर्मों के द्वारा वो श्रेष्ठता प्राप्त की है। अब यदि श्रेष्ठ उन कर्मों को छोड़ दे तो क्या सोचेंगे, अरे ये तो बड़े हैं, तो बड़े ने छोड़ दिया तो फिर हमें भी छोड़ने के लिए क्या दिक्कत है? यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेव इतरो जनाः सयत् प्रमाणम् कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जैसे जैसे बड़े लोग करेंगे वैसे जैसे छोटे लोग करेंगे। तो ज्ञानी का कर्तव्य बनता है अज्ञानियों में रह करके उनके भगवत प्राप्ति में जो जो अनुकूल है, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो जो अनुकूल व्यवहार है, उस व्यवहार को वो करता रहे, तो उसको देख करके क्या दूसरे करेंगे, ये सोचेंगे अरे देखो इतने बड़े ज्ञानी होकर के भी क्या पूजा पाठ करते हैं, हम तो हमारे पास तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, हमको तो और करना चाहिए, हा? अभी तो हमारा कुछ हुआ ही नहीं है, इनका सब कुछ होते हुए भी ये कर रहे तो हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो हमको तो बहुत तेजी से करना चाहिए, बड़े लगन से करना चाहिए, ये सोच करके क्या है वो करेंगे। तो ही कह रहे विद्वान से तादृशाम मध्य तिष्ठे, यदि उनके बीच में रहता है विद्वान तद अनुरोधतः, उनके अनुरोध से अर्थात उनके अनुसार क्या है कर्म करना चाहिए, शरीर मन वाणी से। उनके अनुसार का मतलब उनको भगवत प्राप्ति में जैसी जैसी जिन जिन कर्मों से सुविधा होगी अथवा जो कर्म वो कर सकते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, नहीं तो ऐसे भी कर्म है कि भगवत प्राप्ति के लिए तो अनेकों कर्म है, किंतु सभी कर्म सभी लोग नहीं कर सकते ना। अभी जिस गुरु ने कह दिया कि तुमको आज क्या है निर्जला रहना है, अब निर्जला रहने की यदि उसकी कैपेसिटी नहीं होगी तो वो कैसे कर पाएगा उस वर्ग को, तो नहीं कर पाएगा। उसके सामर्थ्य के अनुसार क्या है वो कर्म करवाता रहे अथवा स्वयं भी क्या है करे, अपने को देख करके वो करेगा, करोति अखिलाः क्रिया, सब क्रिया करेगा वो ज्ञानी, और करना चाहिए उसको सबके बीच में रह करके। टीका देख लीजिए, विद्वांस तादृशाम कर्मिणाम मध्य, तादृश कर्मणि मतलब जो कामी कर्मी और निष्काम कर्मी, कामी कर्मी हो गई जो स्वर्ग इत्यादि को चाहने वाले, और निष्काम कर्मी हो गए साधक जो मोक्ष को चाहने वाले, उनके बीच में रहेगा उस समय में मध्य तिष्ठित चेत यदि रहता है तो कहते तद अनुरोधतः, उसका अर्थ करते हैं तेषाम अनुसारेण, उनके अनुसार क्या करना चाहिए उसको, शरीर आदि भी सर्वक्रिया, उस ज्ञानी को उनके क्या है उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके अनुकूल उस क्रिया करने में क्या है उनका उत्साह बढ़े, ऐसी ही क्या उसको क्रिया करनी चाहिए, हाँ लोक अनुग्रह के लिए करना चाहिए। शरीर आदि भी अर्थात सर्व क्रिया करोति, वो करता है शरीर आदियों की, शरीर अर्थात कायिक वाचिक मानसिक वो क्रिया करता है, ध्यान लगाएगा, जप करेगा हाथ में माला लेकर के, और अपने को क्या है त्रिपुंड लगाएगा, गले में माला पहनेगा, तो उसका देख करके क्या है सब करते हैं, अथवा वो जैसे रह रहे वैसे ज्ञानी भी रहता है, क्योंकि जिस समुदाय में रहना होता है उस समुदाय के अनुसार उसको करना होता है। अब समुदाय को छोड़ करके हम अपना ही दूसरा ही चलाएंगे तो वो मेल खाता नहीं, इसलिए वो जिस समुदाय में रहते वैसे करना। अच्छा, उस करने से कोई दिक्कत नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास ज्ञान है, वो ज्ञान इतना प्रबल है इतना मजबूत है कि वो ज्ञान उनके प्रवृत्ति और निवृत्ति से कुछ उस ज्ञान को फर्क नहीं पड़ता, अथवा वो ज्ञान ऐसा है कि उस प्रवृत्ति निवृत्ति को अपने ऊपर प्रभाव हावी होने नहीं देता है। उनका ज्ञान ऐसा होता है वो भले ही प्रवृत्ति करे चाहे निवृत्ति करे, वो निवृत्ति प्रवृत्ति उनको क्या है उनके ऊपर हावी होती नहीं है, वो ज्ञान होने के कारण। अस्यैव तत्व बुभुत्सानां मध्ये अवस्थितस्य कृत्यम आह। अच्छा, जो तत्व बुभुत्सा जिसको क्या है तत्व को जानने की इच्छा है, अब उनके मध्य में यदि रहते हैं तो कहते हैं अवस्थितस्य कृत्यम आह, उनके बीच में रहने का जो कृत्य है वो क्या कृत्य होता है, उसको क्या कृत्य करना चाहिए, जो साधकों के बीच में यदि रहना ज्ञानी को तो उनको क्या करना चाहिए ये बता रहे। पहले वाले ये अभी श्लोक में क्या बताया, जो स्वर्गादियों की इच्छा करने वाले कर्मी उनके बीच में यदि रहेगा तो क्या करना चाहिए, तो वो जैसे साधन कर रहे वैसे साधन करना चाहिए। अथवा वो कहते महाराज जी चलिए यज्ञ करेंगे हम लोग, हाँ चलो भाई यज्ञ करेंगे। महाराज जी हम तीर्थ यात्रा को चलेंगे, हाँ भाई चलो तीर्थ यात्रा को चलेंगे। वो जैसे कहते उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उनके हां में हां मिलाता रहता है ज्ञानी और करता है, तो उनका भी उत्साह बढ़ जाता है। अब वो हो गई स्वर्गादि अर्थात कामी लोगों के विषय में, अब जो है निष्कामी जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसके विषय में, उसके बीच में रहेगा तो उसको क्या करना चाहिए ज्ञानी को, उसके विषय में चर्चा करते हैं। एष मध्ये बुभुत्सानां, एष मध्ये बुभुत्सानां यदा तिष्ठेत् तदा पुनः, यदा तिष्ठेत् तदा पुनः बोधा यैषां क्रिया सर्वा, बोधा यैषां क्रिया सर्वा दूषयंस्त्यजतु स्वयं, दूषयंस्त्यजतु स्वयं। कहते हैं एष मध्ये बुभुत्सानां, बुभुत्सानां इन जिज्ञासुओं के बीच में जो तत्वबोध करना चाहते हैं ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे साधकों के बीच में यदा तिष्ठेत जब वो रहेगा तदा पुनः उस समय में उसका क्या कर्तव्य है, तो बोधाय एषां क्रिया सर्वा, जो आत्मज्ञान के लिए बोध के लिए जितनी भी क्रिया है उन क्रियाओं के विषय में उस साधक को दोष का प्रतिपादन करते रहना चाहिए। हाँ, क्या दोष का प्रतिपादन करना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए श्रुति में आता है न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एकम अमृतत्वम आनुषु, वो शिष्य को समझाएंगे साधकों को समझाएंगे, देखो न मोक्ष कर्म से प्राप्त होता है न संतति से प्राप्त होता है न धन से प्राप्त होता है न मेधया न मेधा से प्राप्त होता है, वो तो मात्र त्यागेन एकम अमृतत्व मानुषु, वो त्याग से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा ज्ञानी क्या करे साधकों को क्रियाओं में दोष दिखाए, अर्थात जो भी क्रियाएं है त्याग को छोड़ करके उन सभी में क्या है दोष ही दोष पड़ा है। कर्म के यदि कर्म करते हैं तो कर्म का फल क्या है, क्या अनित्य है, क्षीणी पुण्य लोकम क्षीणी पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो जाता है फिर वापस मृत्यु लोक में आएगा, तो जो पुण्य लोक अर्थात स्वर्ग लोक में गया था वो किसका फल था, कर्म का, अर्थात वो कर्म का फल कैसा क्षीण होने वाला है। तो इसलिए आपको अनंत सुख चाहिए मोक्ष चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कर्म को छोड़ना पड़ेगा। न प्रजया, तुम कहोगे कि नहीं मैं संतान उत्पन्न करूंगा तो बहुत सुख होगा, तो कहते प्रजा से भी सुख मिलने वाला नहीं है। और न धनी न, चाहे कितना भी धन कमाओ उस धन से सुख मिलता नहीं है। तो एक ही उपाय उसके लिए क्या, त्याग लेना, ये सबका त्याग, कर्म का त्याग, प्रजा का त्याग, धन का त्याग, सबका त्याग कर दिया। लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, इन तीनों का क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा, तभी जाकर के क्या है, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसा क्या है, उस साधक को वो ज्ञान दे दे, सभी कर्मों के प्रति दोष दिखा करके उसको बोध के पीछे ही लगवा दे, बोध के प्रति अर्थात ज्ञान के प्रति उसकी रुचि बढ़ाए, जिससे ज्ञान जल्द से जल्द क्या उसको प्राप्त हुए। ऐसा ही क्या करना चाहिए, ज्ञानी को करना चाहिए। हाँ, जो स्वर्ग आदि की इच्छा करते हैं और वो कर्म करते हैं, उनके लिए दोष नहीं बताना। अथवा सांसारिक वस्तु की इच्छा करते हैं और अच्छा कर्म कर रहे हैं, परंतु जो अपने मन से कर रहे हैं उसको मोक्ष की कोई इच्छा नहीं, सांसारिक वस्तु की इच्छा है, उन वस्तुओं के लिए सत्कर्म कर रहा है, तो वहां पर उसको ये नहीं बताना ये कर्म गलत है तुम्हारा, ये मत करो, अरे तुम ये छोड़ करके क्या है ज्ञान प्राप्त करो, ये नहीं बताना है। इसलिए भगवान ने कह दिया ना, न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगीनाम। जो कर्मासक्त लोग है उनकी बुद्धि में भेद न डाले। अब वो मान लीजिए क्या है, वो सोचता है कि मैं भगवान को जल चढ़ाऊंगा तो मुझे भगवान क्या है ये चीज देंगे, और कैसा जल चढ़ाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं, बस आकर के चढ़ा रहा है। मंदिर में आकर के कैसा जप करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कुछ पता नहीं, परंतु कर रहा है, किसके लिए, सुख के लिए। वो जो साधन कर रहा है उस साधन में भेद न डाले, अरे कैसे साधन कर रहे हो, ये सब बेकार का साधन है, इससे बढ़िया साधन करो। क्या भगवान शंकर के मंदिर में जाते हो, चलो कृष्ण के मंदिर में जाते हैं, कोई कृष्ण के मंदिर में, अरे क्या कृष्ण के मंदिर में जाते हो, चलो दुर्गा जी के मंदिर में जाते हैं, और कोई कहता अरे क्या ये भगवान शंकर इसमें जा रहे, चलो साईं बाबा के पास जाएंगे। कर्म तो कर रहा है, सत्कर्म है उसका, कोई बुरा कर्म नहीं, उस कर्म से किसी को परेशानी नहीं है। तो ऐसे कर्म करते समय में उस कर्म से उसको दोष दिखा करके न हटावे। तो किसको हटावे, साधक को हटा सकते हैं, क्योंकि उसको पता है, साधक को वो विचार करता है ज्यादा, कर्मी विचार नहीं कर पाता है। जिसको सांसारिक वस्तु की इच्छा है वो कर्म के विषय में वो ज्यादा विचार नहीं कर सकते, उनके सामर्थ्य नहीं होता। और जो साधक होता है वो विचार किया हुआ है, परंतु एक विचार करने के बावजूद भी छूट नहीं पाता है। जैसे बहुत से लोगों को पता है, जैसे मान लीजिए कोई मदिरा पान करता है, व्यसन है, नशा है, वो जान रहा है कि मैं खत्म हो रहा पी पी करके, नशा करके, समझ रहा है ये अच्छी नहीं है, ये समझने के बावजूद भी क्या है उसको ले रहा है, मतलब क्या उसकी उसमें आ सकती है। अब साधक को भी क्या कर रहे हैं, कह रहे कि साधक जब मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल रहा है किंतु उसका जो है सांसारिक कर्म छूट नहीं पा रहा है, तो उस समय में क्या करे ज्ञानी, उन कर्मों में दोष दिखाए और दोष दिखा करके वहां उन कर्मों से उस क्या करे उसको वहां से हटा दे, और कहां लगा दे, श्रवण मनन निधिध्यासन में लगा दे, उससे क्या हो जाएगा वो मोक्ष की ओर चल सकता है। वही कह रहे बोधाय एव क्रिया, ज्ञानी की क्रिया क्या होनी चाहिए साधक के लिए, बोध के लिए ही होनी चाहिए, कर्म में प्रवृत्त करने के लिए नहीं होनी चाहिए, मात्र बोध के लिए उसकी क्रिया होनी चाहिए, जिससे साधक क्या बोध की ओर ही बढ़े, ऐसी ही क्या ज्ञानी क्रिया करता रहे। सर्व दूषयन, क्या करते हुए, सभी ज्ञान के सिवा सब कुछ क्या है दूषित है, न्यून है, ऐसा क्या है दोष दिखाए उनको, दोष का प्रतिपादन करे और प्रतिपादन करके उसको क्या है वहां से हटाए, यही ज्ञानी का काम है। किन के बीच में रह करके, साधक के बीच में रह करके। टीका देख लीजिए, एष विद्वान बुभुत्साना मध्य तदा तिष्ठेत यदा तिष्ठेत, जब ज्ञानी साधकों के बीच में रहेगा तो कहते तदा एषाम बुभुत्सानाम बोधाय, उन साधकों को क्या है ज्ञान करवाने के लिए, बोध कराने के लिए, तत्व ज्ञान जननाय, तत्व ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, ताहा क्रिया दूषयन, उन क्रियाओं में दोष दिखाइए जो क्रियाएं क्या है तत्व बोध में बाधक है। बुभुत्सा मतलब जानने की इच्छा, जो क्या है आत्मा को जानने की इच्छा कर रहा है अर्थात मोक्ष प्राप्ति की इच्छा कर रहा है, तत्वों को जानने की इच्छा कर रहा है। ऐसा तत्वों को जानने की इच्छा करने वाले के भीतर क्या कराए कि जो तत्वों को तत्वबोध में बाधक जितनी भी क्रिया है उन क्रियाओं में दोष दिखा दे, क्योंकि उसको पता नहीं ना मुझे तत्व बोध क्यों नहीं हो रहा है ये पता नहीं लग रहा है, किंतु ज्ञानी को पता लग रहा है कि अरे इसके भीतर ये क्रिया चालू है, ये क्रिया होने के कारण क्या उसको तत्वबोध नहीं हो पा रहा है, तो उसको दिखा दे अरे ये क्रिया क्या है आपको तत्वबोध नहीं होने दे रही, ये दोष है इस क्रियाओं में, इसको हटा दो यहां से। तो ऐसा उसको उपदेश करके तत्वबोध के प्रति क्या उसको लगावे और तत्वबोध करवाए। ता क्रिया दूषयन, उन क्रियाओं का क्या है दोष दिखा करके स्वयं अपि त्यजतु, उनको भी क्रियाओं से हटा देना है और स्वयं भी क्या करना उन क्रियाओं से हट जाना है, तब क्या है वो व्यवस्था चलती है। जो ज्ञानी जिसमें रहेगा जिसके बीच में रहेगा उसके अनुसार उसको करना है, अज्ञानी है तो उनके लिए कर्म में ही कर्म करते रहना, जब साधकों के बीच में आएगा तो उसको साधकों के लिए क्रियाओं से हटाने का काम करना है, क्योंकि वो जानते हैं। इसलिए ज्ञानी को दोष नहीं देंगे कि हमको क्रियाओं से क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि वो समझदार है विवेकी है, उनको कहते ही क्या समझ में आता है हाँ नहीं ये क्रियाओं से क्या हमें बोध नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें क्रियाओं से हटना चाहिए, वो जो कह रहे सही है हमको हटना चाहिए और स्वयं भी वो हट जाए, यही क्या है ज्ञानी को काम करना चाहिए। चलिए आगे के विषय में कल कर लेते। हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।